ट्रेवल।
घर लेना हो अगर तो याद रखना, घर बेचना हो तो भी याद रखना, टीम ताजमहल, टीम ताजमहल, टीम ताजमहल .ca, टोनी कुरैशी की टीम ताजमहल .ca।
फॉर अ रॉयल प्रॉपर्टी बाइंग और सेलिंग एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट बादशाह ऑफ रियल एस्टेट टोनी कुरैशी फ्रॉम सेंचुरी 21 एम्पायर रियल्टी 647-292-1534 647-292-1534।
जी साहब कराम, वेलकम बैक टू रेडियो साजो आवाज़। साथ
क्योंकि हम आगे चलें, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डाउन टाउन टोरंटो में यंग एंड एग्लिंटन स्टेप्स फ्रॉम द सबवे स्कूल शॉपिंग मोर जस्ट एग्लिंटन एंड यंग स्ट्रीट के ऊपर दो बेडरूम तीन बेडरूम के कॉन्डोमिनियम्स हैं। अगले चार साल में मुकम्मल होना है इन्होंने, और अगर आप इनमें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल। मेरा नंबर 6478986245। सबवे पे है, स्कूल साथ में है, शॉपिंग करीब में है, डाउन टाउन से नॉट वेरी फार। ऑफ कोर्स इट्स वेरी रीजनेबल प्राइस। Give me a call 6478986245।
एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
मुझे उन्होंने बताया कि मिड टाउन, जुनेद आई लव यू बच्चा, मिड टाउन बिल्कुल डाउन टाउन नहीं, मिड टाउन। यानी मैं तो चार साल भुगता है, मोहम्मद अली को छोड़ने जाती थी पूरी की पूरी।
जैसे आप बात करती हैं,
पूरी की लड़ाई कर लेनी चाहिए।
ऐसे तो लड़ाई करनी चाहिए,
बिकॉज़ ही डिडंट कम लास्ट वीकेंड के ऊपर ना, सैटरडे को हमारा क्रिकेट की टीम बननी थी, और जुनेद मैंने तो तुम पे तकिया किया हुआ था,
उन्होंने कहा था मैं विकेट कीपर हूँ,
आया ही नहीं ना उसको,
उसकी पीछे की सारी बॉलें चली गई।
नहीं, उसकी बेगम ने उसके पांव पे पांव रख लिया।
अच्छा
साहब, अगर आप क्रिकेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, 770 क्रिकेट की टीम का, तो हमारा मैच 14 और 15 तारीख को, ये ताज़ा फू फैंटास्टिक फू फेस्टिवल जो है ये CAA सेंटर में होगा। 770 क्रिकेट की टीम भी, 770 की क्रिकेट टीम भी खेल रही है, तो आइए बी पार्ट एंड पार्सल टू दिस टीम। जिशान का नंबर आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो ट्रायल्स हैं सितंबर 7 को होंगे 6180 कैनेडी रोड पे, जो डंटन एथलेटिक फील्ड है वहाँ पे, रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक। तो प्लीज़ बी एंड पार्ट एंड पार्सल। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा 6472192580।
मास्टर बिरयानी ग्रिल की बात कर चलूँ, अगर आप कराची की बेहतरीन फूड स्ट्रीट का मज़ा अब मिसेस सागा में न्यू इन सेंटर के फूड कोर्ट में ले सकते हैं। अगर आपने मिडल ईस्टर्न फूड खाना हो, या अगर आपने मास्टर बिरयानी की बिरयानी खानी हो, इसके अलावा बीफ पाया, बारबेक्यू ग्रिल, बोनलेस चिकन, सरसों का साग, और वीकेंड पे स्पेशल हलवा पूरी का नाश्ता वहाँ बैठ के खाइए, या आप घर ले जाके खा सकते हैं। आपने पहुँचना है 580 शेपर्ड एवेन्यू, ये डंडास एंड हिरोन्टारियो के मेजर इंटरसेक्शन पे, न्यू इन सेंटर के फूड कोर्ट में है मास्टर बिरयानी ग्रिल। 9052760666, 9052760666 इनका फ़ोन नंबर है। फजल वदूद की बात कर चलूँ, फजल वदूद का ताल्लुक इंश्योर प्रो से है, और 27 साल का साहब एक्सपीरियंस इनके पास, इंश्योरेंस एंड अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का सोच रहे हैं, तो भाई आप एक दफ़ा इनको कॉल कर लें। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इनके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो आप इनसे, फजल वदूद से इंश्योरेंस के बारे में, या आप इनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कीजिए। फ़ोन नंबर है इनका 6472864285, इनका फ़ोन नंबर है। इसके साथ साथ हेरा ट्रैवल एंड उमरा टूर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन GTA, सर्विंग द कम्युनिटी सिंस 1993। अगर PIE के होलसेल प्राइसेस पे आपको टिकट चाहिए हो, तो हेरा ट्रैवल से बात कीजिए, या आप स्पेशल फेयर्स फॉर एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, यहाँ के लिए आपको टिकट चाहिए तो स्पेशल फेयर मिलेगा आपको। हेरा ट्रैवल का कहना है सस्ता टिकट और पक्का टिकट, हेरा से खरीदें अपना टिकट। वाह भाई वाह। 28 डंडा स्ट्रीट डंडास एंड हिरंटारियो के कॉर्नर पर आपको मिलेगा हेरा ट्रैवल एंड उमरा टूर। 416-255-5566 इनका फ़ोन नंबर है, 416-255-5566 इनका फ़ोन नंबर है। नायला तौसीफ मेकअप स्टूडियो एयरब्रश मेकअप स्पेशलिस्ट इन GTA, पिछले 15 सालों का एक्सपीरियंस इनके पास है। ऑफरिंग स्किन हेयर एंड मेकअप सर्विसेज, ब्राइडल मेकअप हो या पार्टी मेकअप हो, आप एक दफ़ा इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शी इज़ गॉट हर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्राम Wink Academy from Toronto, Beauty Design from Canada, Samir Kuzami from Dubai, Gregory Khat Saps from Pakistan, और सब इंस्टाग्राम पे आप इनको चेक कर सकते हैं, स्नैपचैट पे इनको चेक कर सकते हैं नायला तौसीफ के नाम से, या आप नायला तौसीफ मेकअप स्टूडियो फेसबुक पे इनके जाके इनको चेक कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर नोट कर लें नायला तौसीफ का, 9056078349 इनका फ़ोन नंबर है। इसके साथ साथ हेयर मैक्स अल्टीमेट हेयरिंग सोल्यूशन, अगर आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो रही है तो साहब हेयर मैक्स अल्टीमेट हेयरिंग सॉल्यूशन के जनाब शिराज साहब कहते हैं कि फ्री नो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हेयरिंग टेस्ट करके देंगे आपको। यू डोंट हैव टू पे अ पेनी, जाइए आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लीजिए, पहुंचिए वहां पर और जाके वहां पर फ्री नो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हेयरिंग टेस्ट करवा सकते हैं आप। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, 861 जैन स्ट्रीट जैन एंड एग्लिंटन का एरिया जैन पार्क प्लाजा में, और दूसरी क्लिनिक इनकी एरनडेल स्टेशन एंड डंडास के कॉर्नर पर वेस्टडेल मॉल में आपको मिलेगी। तो साहब किसी भी एक लोकेशन पर जा सकते हैं। ये कहते हैं कि वी डील इन वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स फॉर हेयरिंग एड्स एंड अदर असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, हेयर मैक्स अल्टीमेट हेयरिंग सॉल्यूशन। आप इनका फ़ोन नंबर नोट कर लें, 416-792-8792 इनका फ़ोन नंबर है। इसके साथ साथ बात करते चलो हमारी और आपकी डेंटिस्ट डॉक्टर नाजिया रहमान की, डॉक्टर नाजिया रहमान की दो लोकेशंस हैं। आप 150 येलो एवंस बुलेवार्ड इनकी पहली लोकेशन, अब सेकंड लोकेशन 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। डॉक्टर नाजिया रहमान का कहना है कि फैमिली कॉस्मेटिक ब्रेसेस एंड implant dentistry close to home, new and emergency patients are always welcome, comprehensive dental care ke liye morning, evening and same day emergency appointments ke paas mil sakte hain, direct billing to insurance and easy payment options. Dr. Nazia Rahman, phone number note kar lein, 905-872-1100 फ़ोन नंबर है। कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस की बात करें चलो साहब, नाम से ही जाहिर है ब्रांड न्यू फर्नीचर एंड ब्रांड न्यू अप्लायंसेस इनके पास होते हैं। एंड अगर आपने किसी भी रूम, बेडरूम हो, डाइनिंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, उसका फर्नीचर चाहिए हो तो आप पहुंच जाइए कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस के पास। और साहब अप्लायंसेस में ब्रांड न्यू अप्लायंसेस आपको चाहिए हो तो फिर आपने पहुंचना है कंप्लीट होम फर्नीचर एंड अप्लायंसेस, 547 स्टील्स एवेन्यू Steels in Candy के corner पर in Brampton, 905-244-4663
इनका फोन। रोने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, जैसे हंसने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं हर एक के हंसने के। कुछ लोग ऐसे हंसते हैं जैसे बस रोना आ गया, ठीक है। इसी तरह रोने के भी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। कहते हैं कि जो अरब खवातीन होती हैं ना, औरतों के रोने के अंदाज में बता रही हूँ, आदमी तो भां भां करके रोते हैं।
नहीं, आदमी रोता नहीं,
रोते भी हैं
मगर वो अंदर ही अंदर रोते हैं।
नहीं, अंदर ही अंदर नहीं रोते, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने घर वालों की बुराइयां कर करके रोते हैं। औरतें नहीं ये कुछ करती, औरत कभी अपने घर की बुराई नहीं करती।
माय गॉड, ये पता नहीं कहाँ की औरत, मर्दों की भी एक दो ऐसी औरतें दिला दे।
नहीं, मर्दों की प्रॉब्लम ये है
ऐसी कि वो
अपने अपने घर
उनका एड्रेस दे,
अपने दोस्तों से जा जाके करते हैं, अपनी अपने मामले दूसरों से। आपने ये कॉलेजों की आम बातें, शर्तें लगा लगा के आदमी काम करते हैं। इतने बेईमान होते हैं, इतने बेईमान होते हैं, इतने बेईमान होते हैं चीट करने से। अब देखिए हमजा अब्बासी, आपको पता है हमजा अब्बासी का क्या हुआ?
क्या हुआ हमजा अब्बासी?
हमजा अब्बासी ने नीलम नामी, निर्मल नामी लड़की से शादी की है। अब क्या हुआ, मीन वाइल हमजा अब्बासी की जो पुरानी बीवी है ना, उसने भी ट्वीट कर दिया। उसने कहा है कि मतलब मेरा मियां था, तुमने मेरे से छीन लिया, ठीक है।
तो ये औरत ने किया ना, आदमी तो नहीं किया ना ये?
नो, आदमी ने, आदमी अपनी कहानियां सुनाने में बड़े मार फसाने में आदमी तौबा अस्तगफर शिरते लगा लगा के आदमी मैरिड होते हैं बदहैत बदशक्ल बदसूरत, ठीक है। और वो मतलब बीवी बच्चों वाले होते हैं, मगर वो ये समझते हैं पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, आई डोंट नो। ये आदमियों की प्रॉब्लम, औरतों की प्रॉब्लम,
और आदमी जो
आदमियों की प्रॉब्लम।
अगर आप ये सर्वे देखें ना,
हर वक्त अपने सीने पे अवेलेबिलिटी का बोर्ड लटका के चले फिरते हैं। एनीवेज, आई एम नॉट इनटू दैट डिस्कशन।
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
औरतों की प्रॉब्लम।
वाणी साहब, माजिद भाई।
जी जी जी
माजिद भाई, ये तो आपने बड़ा छत्तों में हाथ डाल दिया। तो अब तो भैया आपकी जान आज तो छूटने वाली नहीं है।
देखो चंदा, मैं बिल्कुल, आदमी हर वक्त अवेलेबल अवेलेबल का बोर्ड लगा के सीने पे चले फिरते हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी,
थैंक यू।
100% आप सही कह रही हैं। और ये जो सनसेट से पहले ये बचने वाले नहीं है। और दूसरी बात
जी,
ये जो आपने बोला ना, इन्होंने पूछा कौन सी औरत, वो मुझे औरत मालूम है जो बुराई नहीं करती।
कौन
है,
कोई है ऐसी?
हाँ हाँ, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो हिंदुस्तान
आवाज कट गई।
कब्रिस्तान
बहुत शुक्रिया मेरे भैया,
बहुत
बहुत शुक्रिया,
बहुत खराब हो।
जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
हेलो
हेलो जी, सलाम माजिद भाई।
जी वालेकुम सलाम
माजिद भाई। अरशद जी साहब खाली वाली बहस कर रहा है, अरशद जी खर्च करके आई है, हर चीज बनवा के आई है। मतलब मैं हर दुआ कबूल करूंगा, मगर एक दुआ कबूल नहीं करूंगा।
कौन सी?
जी बात नहीं मानना वाले माजी जमाल की बात नहीं मानना, जो भी आर्गुमेंट करना अपनी जिद पे रहना।
नहीं नहीं, ये अल्लाह की कसम जिद की बात नहीं है, ये जिद
की बात है सर।
डीडीटी पे भी आपने माजी जमाल को बोलने नहीं दिया, आपने माजी को बोलने नहीं दिया, आप अपनी अड़ी नहीं नहीं, नहीं।
देखिए माजिद भाई क्या कह रहे हैं, आप वो भी इन्फॉर्मेशन ले ले।
मैं जो है डीडीडी की बात नहीं कर रहा था, इन्होंने डीडीटी की बात की है, एक बीमारी है बीडीडी। अगर आपको नहीं पता है ना,
बीडीडी किस चीज की एब्रीवेशन है ये बता।
नहीं, मुझे एब्रीवेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बीडीडी जो है एक बीमारी है।
एनी इन्फॉर्मेशन विदाउट नोइंग डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट,
डिटेल पता है मुझे पूरी इसकी बीमारी की, पूरी डिटेल पता है, मगर बीडीडी एक बीमारी है। मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि आपको पता है बीडीडी
बीबी के बारे में? जी मुझे मालूम बीबी के बारे में।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम माजिद भाई, क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तक अच्छा हूँ।
आप ऐसे क्यों बाजी को तंग करते हैं?
मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ सर, मैं तो एक हकीकत की बात पूछी, आप
मैं
आप बता दीजिए।
बाजी को पता क्या करना है?
हाँ।
बाजी को ना एक डंडा ला के उसके आगे एक चूहा लगा देना है।
और आपको पता है चूहा तो छोड़ो,
जो होते हैं ना जाट लोग, जो है कुछ लोग ना वो जो नहीं होते भैंसे, उनको उनके साथ कद्दू करते हैं मुंजी लगाने के लिए ना, चावल लगाने के लिए। वो जब पानी में बैठ जाते उठते नहीं है, उन्होंने मेरा आगे सुहा लगाया होता है। भाजी को मैं लगा के ला के दिया है, एक सुबह पीछे से मारा दम पट्टियां लगवा देंगे घर जाके, मुझे इधर ही पट्टी लगा दे, इधर ही पट्टी लगा दे।
सही सही,
बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। एक और कॉल लूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई।
जी वालेकुम सलाम
माजिद भाई, इसमें बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो आप सब बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। जितनी औरतें होती हैं वो सारी जो है जनाब वो वफा की पुतलियां हैं, और जितने मर्द हैं वो सारे ऐसी वो डंगर हैं। असल में जो है ना, ये जो हमारी वाली सारी अच्छी है, ठीक है ना। और वो जो कैलोपेट्रा है और जितने अंग्रेजी के अल्फाज बने ना, मिस अंडरस्टैंडिंग और
उनके लिए
हाँ हाँ, जितनी भी मिस से शुरू होती है ना, वो सारी वो वाली उनकी
एग्जैक्टली हमारी हाँ, औरत तो वफा का पुतला है।
अच्छा मुझे निकल गई है क्या? नहीं नहीं, बाजी हमारी हमारी वाली पतीलियां हैं,
पतीलिया है वो कैसे?
नहीं नहीं
वो पुतला तो मेल हो गया ना।
बहुत शुक्रिया सर।
वो कर लेती है अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए और घर की बच्चे।
हाँ जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
बाजी भाई वालेकुम सलाम और आरफा बहन तुम्हें भी
वालेकुम सलाम। जी जी
मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
देखो देखो कि एक मुल्क की बात नहीं है, सारी दुनिया में ही औरतों पर जुल्म होता है। करते कौन है?
आदमी
मर्द।
हाँ
मर्द तो जहाँ ब्रह्मपुर में ही देख लो, तो मेरी तो लड़की वकील है ना जहाँ पे, वो तो सुनाती है ना बातें, दिल कमता है। अच्छा तो मर्द तो औरतें कितने कत्ल करती हैं, मर्द तो कितने कत्ल
ब्रैम्पटन में इतने मर्डर्स हो गए हैं और सारे के सारे आदमियों ने किए।
और मेरी कम्युनिटी में लोग शराबें पीकर अपनी औरतों को इतना
पीटते हैं,
इतना मारते हैं, बहुत मारते हैं
क्या, और हर वक्त ना दूसरी शादी के लिए तैयार रहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल
आई नो थैंक यू।
देखो बिल्कुल प्यार रहते हैं हर वक्त, 7 साल की उम्र में भी।
आई नो जी गुरमेल भाई, थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच।
अच्छा तो देखो फिर ये नहीं ख्याल करते कि हमारी भी कोई बहन है, हमारी भी
नहीं 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 अपनी बहने तो बहन वो फिर जो मर्जी कर ले ठीक है।
मेरी बहन कई केस ऐसे होते हैं जैसे सास ससुर भी अपनी बहू को मारते हैं।
बहुत शुक्रिया सर,
बहुत शुक्रिया,
बड़ी मेहरबानी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
माजिद भाई वो असल में टाइम ऐसा हो रहा है ना कि डिनर से पहले का टाइम है, तो अभी हमें जो बाजी कहेंगी हम एग्री करना है हमें।
अच्छा
डिनर डिनर जब तक ना मिले जो बाजी कह रही है जो घर वाली कह
रही
है सही कह रहे हैं। आपने एकदम सही कहा,
ठंडे दिल से
बात की बात होती है। वो तो
नहीं तो वो तो बताया ना, वो तो आप लोग टेक्निकल हो। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, आप अजमा के देखें। देखिए आपको घर जाएंगे पका पकाया खाना मिलेगा, सुबह आप निकलते हैं पका पकाया नाश्ता मिलता है, एवरी वीकेंड के ऊपर धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, इस्त्री किए हुए कपड़े मिलते हैं, आप बाथरूम में जाते हैं आपके कपड़े आपको तैयार मिलते हैं।
मुझे लग रहा है बाजी ने घर में मेरे जो है ना वो लगाया हुआ, अपना सैटेलाइट लगाया हुआ, सब देख लेती है।
सही,
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
आई नो नेचर ऑफ ईस्टर्न वुमन।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम
वालेकुम।
मैं नहीं बोलती, आए नहीं थे, खेलने नहीं आए थे।
अरे बात टेंशन हो गई थी, बात में बताऊंगा क्या हुआ था।
अच्छा अल्लाह खैर करे।
अच्छा एनीवे वो दो चीजें, मेरा आवाज बिल्कुल क्यों हो रहा है?
इसलिए एक हो रहा है कि आपका गाड़ी का रेडियो लगा हुआ है। अब नहीं एको होगा,
अभी भी हो रहा है सर आपका एको गाड़ी में।
हेलो।
हाँ जी अब सही है।
अच्छा मैं कह रहा था कि वो जो हम बात कर रहे थे पहले, जब नए बच्चे जो पढ़ लिखते निकलते हैं, तो हमारे बच्चों ने हमने जो नोट किया है कि माशाल्लाह पढ़ाई में तो बहुत तेज होते हैं, अपने सारे क्वालिफिकेशन वगैरह एकेडमिक बहुत अच्छा है।
शहजादे आवाज
इंटरनेट
सही, आवाज क्यों कटने लग गई शहजादे?
लेकिन उनमें सोशल स्किल्स नहीं है, हमारे बच्चों को ये है कि इंटरेक्ट करना सिखाए हम लोग ना।
अच्छा इसका मैं आपको जवाब देती हूँ, जो सोशल एक्टिविटीज़ नहीं ना उसमें माँ बाप उनको खुद एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ फ़िशिंग के लिए निकल जाती हूँ, तो रादर देन आपका बच्चा कंप्यूटर पे बैठा रहे आप उसको लेके किसी ऐसी एक्टिविटी में लिख जाएं जिसमें उसका भी इंटरेस्ट हो। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री इट्स अ बिग
अपना केस स्पेशल ऐप पेश करने में और अपनी जो केस को हम डिफेंड करने की सलाहियत की बात नहीं कर सकता वो।
एग्जैक्टली
तो वो कंप्यूटर्स के ये हमारे बच्चों में अक्सर, बल्कि हमारे यार नहीं दूसरे गोरे बच्चों में भी ये इंटरनेट इतना तबाह किया है ना।
बिल्कुल सही कह
रहे हैं, दे हैव बेसिकली हाउ टू डील विद पीपल।
Exactly. You are 100%, I agree with you 100% right, 100%
शहजादे बड़ा, you hit the nail. बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो
चोट तो नहीं लगी,
थैंक
यू वेरी मच। ये बिल्कुल सही है और बहरहाल टॉपिक हमारा ये प्रोग्राम के शुरू का टॉपिक है।
जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
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 जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम
नदीम भाई।
एक काम ही 50-50 रहा जी।
अच्छा
जेड़े काम बहुत सारे काम ने जेड़े मर्द नहीं करते सारा दिन पूरे महल दिया बुराइयां करके आखिर कह रही है छोड़ो भला हमें क्या। मेरा दोस्त मेनु परसों बड़ा उदास जा सी।
अच्छा।
मैं क्या की होया कहंदा बस वो तुम्हारी भाभी से कुछ कहा सुनी हो गई।
अच्छा।
और मैं क्या सच्ची गल दस कहा सुनी तो नहीं होनी सिर्फ सुनी सुनी होई होनी।
नहीं 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 कहा सुनी ही हुई होगी। आदमी पेट्रोल का डब्बा गिरा देते हैं माचिस के ऊपर।
डिप्लोमेटिक होंगे ने मियां बीवी बड़ा प्यार सी ते ओनू कहन लगी वे अड़िया मैं सोचनी आ जे मैं मर गई तो तेरा की बनेगा। ते ओ कहंदा ते मैं सोचना जे तू ना मरी तेरा की बनेगा। अच्छा जो कोई सौदा कोई शैल मंगनी हो ना कहते चलो ऐसा करो मैं छुपती हूँ आप मुझे ढूंढना अगर आपने ढूंढ लिया ना तो फिर आप मुझे शॉपिंग पे लेके जाना। तो कहता कि मैं अगर मैं ना ढूंढ पाया तो ऐसे तो ना बोलो मैं ये दरवाजे के पीछे तो छुपूंगी।
आपने उसकी सादगी भी नोट की।
बहुत सादा थी बहुत सादा
बहुत सादा
जी
बड़ी मेहरबानी। ऐसे खुशियाँ रखे जैसे आप सबको हंसा देते हैं।
हाँ जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम माजिद भाई मिजाज शरीफ कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं आप सर?
अल्लाह का शुक्र है। रियाज बोल रहा हूँ। अरे पापा अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अरे पापा अभी मैं मुख्तसर बात सुन रहा था आपकी किसी साहब के साथ जो बात हो रही थी। ये सोशल एक्टिविटीज की जो आपने बात की एक तो आपका आपने जो बताया फिशिंग के मुताल्लिक वो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है मगर मैं ओवरऑल हमारे फॉर्म के लिए एक जनरल बात कर रहा था कि हमारे पास कैनेडियन गवर्नमेंट के और ऑन्टारियो गवर्नमेंट के इतने प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम हमारे बच्चों को भेज सकते हैं सिर्फ सोशल एक्टिविटी के लिए नहीं नेटवर्किंग के लिए जो उनको जिंदगी में आगे काम आ सकता है।
वहाँ पे अलमिया आपका बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन का। अलमिया ये है कि हम अपने बच्चों को फ्रॉम द डे वन सेल्फिश कर देते हैं कि नौकरी वहाँ करना जहाँ तुमको पैसे मिलेंगे। हालांकि आप किसी बड़े आदमी को देख लें वॉलंटियर वर्क दैट पेज अ लॉट। अगर हम बच्चों को शुरू से वॉलंटियर वर्क की आदत डालें तो हाउ इट वर्क्स।
बिल्कुल सही बात है आपकी टोटली अग्रीड 100% हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी बैटर्ड शेल्टर फॉर वुमेन ये सारी जगहों पे इन लोगों को जाना चाहिए। इन लोगों का शऊर बढ़ेगा इनकी आंखें खुलेंगी कि ये माशरे में कैसे कैसे चीजें होती है और हम किस किस्म से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं
ह्यूमन
शेल्टर में हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। हमारे बच्चों को चाहिए कि एयर कैडेट ज्वाइन करें स्काउट्स कनाडा ज्वाइन करें आगे के उनके अपॉर्चुनिटीज उनको नेटवर्किंग करने के लिए टोस्ट मास्टर्स बात करने के लिए और वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी जैसे आपने बताया इतना बड़ा मकाम है वॉलंटियरिंग का यहाँ पे कि आप पहला रिज्यूमे बनाते तो वॉलंटियरिंग पूछते हैं हर आप आपने कितना वॉलंटियरिंग आपने किया है।
बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं यहाँ पे
लोगों को चाहिए कि रिसर्च करके बच्चों को डालें। हमारा इतनी बड़ी फॉर्म हो गई हमारी यहाँ पे लेकिन हम फिर भी दूसरे झगड़ों में पड़े हैं। हम बच्चों को हमारा इनकरेज नहीं करते ये चीजों में जाने के लिए।
रेज्यूमेस बनते हैं इससे ना आपका रेज्यूमे बड़ा अच्छा बनता है। जब
आपको पता है कि सलमा अताउल्लाह जान इनके रेज्यूमे का सबसे बड़ा फैक्टर इनका वॉलंटियर वर्क था। सलमा जाहिद इनका सबसे बड़ा फैक्टर इनका वॉलंटियर वर्क था। बहुत शुक्रिया चंदा भाई आपने बहुत प्यारी बात कही। देखिए साहब मैं अगर आपसे ये बात कहूंगी आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो मैं अपने वीक पॉइंट्स पे भी बहुत कड़ी नजर रखती हूँ। ये जो बीडीटी के बारे में माजिद भाई बता रहे थे एक्चुअली ही वांटेड टू हाईलाइट वन ऑफ माय डिफेक्ट एंड बिकॉज मैं पहले अपनी कमजोरियों पे नजर रखती हूँ बाद में मुझे कोई स्ट्रेंथ अपनी नजर नहीं आती। फर्स्ट आई लुक एट माई वीकनेसेस। तो अभी इस भाई ने जो बात की आई हैड अपॉर्चुनिटी टू रेज वन सन और माँ की मोहब्बत के बीच में एंड नाउ वंस ही इज एज 17 आई फील इट कि मेरी My mohabbat was absolutely wrong mohabbat. My son is very nice, but unfortunately, na to maine usko job karwai. That is a negative of mine, one thing. Aur yani usko padhai ki taraf tawajjuh karwai rakhi. School se jo volunteer work kiya, unhone school ke saath volunteer work kiya. Magar volunteer work is the thing which pays a lot. And of course, university mein the only thing what I'm teaching him ki padhai ke baad the only thing what you need to do is a volunteer work, and volunteer work mein aapki networking hoti hai, it pays a lot.
Volunteer work and the volunteer work mein jo hai aapko insaan ko confidence aata hai,
humanity ko bhi seekhta hai, bilkul sahi,
self confidence aata hai, logon mein uthna baithna aata hai, logon se discuss karna baat karna aata hai usko.
Bahut shukriya. Main albatta baat kahan ja rahi thi, kehte hain ki rone ke mukhtalif tareeka hai kar hote hain, chalein kal isko
rone pe kal baat karenge hum. आज हंसने हंसने की बात हो गई है तो रोने पे कल बात करेंगे हम.
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का साहब. एक हमारे पास प्रोजेक्ट है जो डाउनटाउन में है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एग्लिंटन एंड यंग पे कॉन्डोमिनियम्स का है. आपको बताइए इस पूरा अरसा में जब घरों की कीमतें गिरी भी तो दीज आर ओनली कॉन्डोमिनियम्स जिनकी प्राइसेस नहीं गिरी. और टोरंटो इज स्टिल चीपर देन अमेरिका, चीपर देन चाइना, और ऑफकोर्स डाउनटाउन तो अब हाथ लगने का नहीं है
टाइम बीइंग.
या मगर मिड टाउन का ये प्रोजेक्ट है 700 अपर 700 से प्राइस स्टार्ट हो रही है. दो बेडरूम दो वॉशरूम के साथ ये कॉन्डोमिनियम्स हैं. इफ यू वांट टू ज्वाइन इट गिव मी अ कॉल. मेरा नंबर 6478986245. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का साहब. प्रोग्राम के आखिर में हमेशा एक रिक्वेस्ट किया करती होती हूँ. वो लोग जो आज हमारे साथ नहीं उनको अपनी दुआओं में याद रखते हुए, मुजफ्फर अली को और वो तमाम जो आज हमारे साथ नहीं, बहुत से लोगों के वालदैन हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकती हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, उनको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. अल्लाह ताला उनकी जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे. आमीन सुम आमीन. मुझे इजाज़त दीजिएगा. गुड नाइट टोरंटो. आई लव यू टोरंटो. जिंदाबाद. गॉड ब्लेस एवरीबडी. अल्लाह ताला आपके रिज्क में इजाफा करे, बरकत दे. आमीन. इजाज़त दीजिए. अल्लाह
हाफिज. से दुआ मांगता हूँ अता कर तू शाने करीमी कसत का दिला दे इलाही रहीमी कसत का न मांगूंगा तुझसे मांगूंगा किससे न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे तेरा हूँ मैं तुझसे अता मांगता हूँ करम मांगता दुआ मांगता हूँ जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता जो बीमार है उनको सेहत अता कर.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birach Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
in your face, all over the place.
We're online 24/7, 24/7.
ये है साजो आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7/365। आप साजो आवाज को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं www.eawaz.com या ई आवाज ऑफिशियल ऐप एंड्रॉइड और एप्पल स्टोर पर, या फिर लोकल फोन लाइन पर सुनने के लिए अभी डायल करें 647-557-1017। हमारे साथ शामिल रहिएगा, हमेशा की तरह आज भी दिलकश प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। हम आपकी कीमती आरा के मुंतजिर हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं rfim@eawaz.com। प्रोग्राम का आगाज करते हैं बीबीसी उर्दू न्यूज से सेरबीन के साथ।
बुध 4 सितंबर, बीबीसी के प्रोग्राम सेरबीन के साथ मैं हूं काशान अकमल। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में सिक्योरिटी लॉकडाउन में दिन को नरमी के बावजूद तजारती मराकज बंद क्यों हैं? एक ताजर कहते हैं,
माने या ना माने, यहाँ पर कश्मीर में एक डर है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे मेरे सामने कोई ऐसी चीज सामने नहीं आती है कि मैं अपनी दुकान पे चाबी लेकर दुकान का ताला खोल।
करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुजाकरात, कितने सिख यात्री सहूलत से फायदा उठा सकेंगे? पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान बोले,
5,000 से जितना ऊपर आ सके इस पे एग्रीमेंट है जी हमारी तरफ से। हम अभी भी इस पे तय कर रहे हैं, इस पे से ब्रैकेट हटा आए हैं कि जी जितने कैपेसिटी प्रोवाइड करेगी 5,000 से ऊपर हम उसको वेलकम करें।
तफसीलन ये मौजूदात आलमी खबरों के बाद, खबरें सुनिए नाजिया गुलजार से।
इंडिया के जरिए इंतजाम कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत खत्म होने के बाद से इलाके में जहां मामूलाते जिंदगी मुतासिर हैं, वही तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद ताजिर अपने कारोबारी मराकज खोलने से हिचकिचा रहे हैं। इस हवाले से तफसील आगे चलकर सेरबीन प्रोग्राम में सुनिएगा। पाकिस्तान की फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्हें सालसी कबूल नहीं है, और अगर सालसी कबूल नहीं है तो सदर ट्रंप से किस मौजू पर बात कर रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि मौजूदा कश्मीर में जो जुल्म सितम है उससे तवज्जो हटाने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसकी प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, या कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तेआल अंगेजी हो सकती है। तो इस सिलसिले में भी अगर कोई ऐसा कदम हुआ तो पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर जवाब देगा।
अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों की वजह से हजारों अफराद शुमाली इलाके पुले कुमरी में फंस कर रह गए हैं। जारी लड़ाई के बायस काबुल के साथ दूसरे इलाकों का राबिता कट कर रह गया है। हुकाम ने लड़ाई में शिद्दत को कम करने की गर्ज से इलाके में इजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने उस मुतनाज़े कानूनी बिल का मुसविदा वापस ले लिया है जिसका मकसद चीन के खसूसी इंतजामी इलाके से मुजरमों को मुल्क बदर करके बीजिंग के हवाले करना था। इस बिल के खिलाफ शुरू होने वाले आवामी मुजाहरे गुज़श्ता चंद माह के दौरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। कैरी लैम के फैसले के बावजूद जमहूरियत पसंद मुजाहरीन की क़यादत ने आवामी एहतजाज जारी रखने की धमकी दी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
खबरें पेश कर रही थी नाजिया गुलजार। हालात हाजरा का प्रोग्राम सेरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान अब इंडिया से जिंदगी बचाने वाली अद्वियात दरामद भी कर सकेगा और इंडिया को बरामद भी कर सकेगा। और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में ब्रेग्जिट पॉलिसी पर होने वाली पहली राय शुमारी में शिकस्त के बाद कबल अज वक्त इंतखाबात की करारदाद पेश करने का इंदिया दिया है। इस सब के बारे में आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले सेरबीन का बड़ा मौजू। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में सिक्योरिटी और मवासलाती निजाम के लॉकडाउन को एक महीना हो चुका है। कश्मीर के बेशतर हिस्सों में दिन के औकात में इन पाबंदियों में कुछ नरमी की जाती है, लेकिन तजारती मराकज और ट्रांसपोर्ट अभी भी मुअत्तल हैं। तफसीलात जानिए BBC श्रीनगर के नुमाइंदे आमिर पीरजादा की रिपोर्ट में, जो पेश कर रहे हैं अयाज असलम।
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں علاقے کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کے بعد سے حالات تاحال معمول پر نہیں آ سکے ہیں. لاک ڈاؤن کے باعث ایک طرف جہاں عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے، وہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے کاروبار پر بھی گہرا اثر پڑا ہے. بازار، تجارتی مراکز اور ٹرانسپورٹ تاحال بند ہیں. حکومت کی جانب سے دن کے اوقات میں نرمی برتی جا رہی ہے تاکہ حالات معمول پر آ سکیں، لیکن لوگ تاحال خوف کی کیفیت میں مبتلا ہیں. جموں کشمیر کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسال نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نے سڑکوں پر آنا شروع کر دیا ہے اور نیشنل ہائی وے پر زندگی معمول کی طرف واپس آ رہی ہے.
ملک دشمن عناصر کی جانب سے دھمکیاں بہت سی مارکیٹس کے کھلنے میں رکاوٹ ہیں. پرمپورا اور مقامی ڈرائیور پر پتھر پھینکنے کے واقعات پر افسوس ہے.
دوسری جانب حکومتی دعووں کے برعکس کشمیر کی عوام کا کہنا ہے کہ اگر علاقے میں سب ٹھیک ہے تو پہلے حکومت اپنی گاڑیاں سڑکوں پر لائے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مغربی بس سروس کے چیئرمین کا کہنا تھا،
اگر سرکار نے سارا نارمل کیا ہے تو پھر تو سرکار کو اپنی گاڑی نکالنی چاہیے پہلے. جب پبلک چلتا ہی نہیں تو گاڑیاں کہاں جائے گی؟ ہماری گاڑیاں بھی چلیں گی جب گورنمنٹ گاڑی نکلیں گی. جس دن سے یہ ہوا ہے ہمارے جو ڈرائیور ہے کنڈکٹر جو گاڑیاں لے کر ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کون کدھر ہے، کیونکہ جو کنٹیکٹ ہے وہ تب سے بیٹھے ہیں، جو بھی جہاں وہ وہی ہے.
ایک دکاندار نے بی بی سی کو بتایا کہ مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم جھک جائیں، اس لیے ہم پر خوف کی فضا برقرار رکھی گئی ہے.
ہم دو تلواروں کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں. مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ ہم جھک جائے، اور جو یہاں کا ایک اپنا ایک خوف ہے وہ ہمیں دوسری طرف سے جھکانے کے لیے کہتے ہیں. یہاں پر ایک ڈر ہے، آپ مانے یا نہ مانے، یہاں پر کشمیر میں ایک ڈر ہے. ڈر کیا ہے؟ مسئلہ، جو مسئلہ ہے اس کو حل کر. جب تک یہ دو چیزیں ختم نہ ہو جائیں، ایک غصہ ایک ڈر، تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی ہے کہ میں اپنی دکان پہ چابی لے کر دکان کا تالا کھول.
کشمیر کی عوام کا کہنا ہے کہ جب تک علاقے سے ڈر اور خوف کو ختم نہیں کیا جائے گا حالات معمول پر نہیں آ سکتے.
بی بی سی سری نگر کے نامہ نگار عامر پیرزادہ کی رپورٹ پیش کر رہے تھے ایاز اسلم. اور اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات آرمی اور پولیس کے اعلی افسران نے آج سری نگر میں پریس کانفرنس کی ہے. ہماری ساتھی نادیہ سلیمان نے دلی میں بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر سے بات کی اور ان سے اس پریس کانفرنس کی تفصیلات کے بارے میں پوچھا.
ہلاکتوں کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ان کے مطابق اس پورے ایک مہینے کی مدت میں سیکیورٹی کی جانب سے ایک بھی ہلاکت نہیں ہوئی ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا. اور دوسرے ان کا یہ کہنا تھا کہ خاطر جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹنٹ جنرل کے جے ایس ڈھلن نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں دو لشکر طیبہ کے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو بقول ان کے پاکستانی شہری ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب پاکستان کی فوج انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب وہ سرحد سے اس طرف جو شدت پسندوں کو بھیجنے کی کوشش نہ کرتی ہو.
عاشورہ کے دنوں میں حالات مزید خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے، تو کیا اس کے حوالے سے کچھ اضافی اقدامات متوقع ہیں؟
دیکھیے، عاشورہ کے وقت یہاں پر کافی زبردست احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس وقت بقول ان کے جو پاکستان کی جانب سے آنے والے شدت پسند اور کی طرف سے کچھ اور جو شر پسند عناصر ہیں وہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پر بقول ان کے پرامن ماحول ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو کافی زبردست تیاریاں ہیں اس کی، اور بڑا الرٹ اور خاص طرح کا الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور جو ابھی جو تھوڑی بہت بندشوں میں جو کمی آئی ہے وہ اس مدت میں یقینی طور پر اس میں اور سختی برتی جائے گی، اور یہ جو قدغن ہے اور بندشیں تھیں ان میں زیادہ تر ایریاز میں وہ دوبارہ وہ پابندیاں نافذ ہوں گی.
بی بی سی دلی کے نامہ نگار شکیل اختر اور ہماری ساتھی نادیہ سلیمان کی گفتگو آپ نے سنی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو، راستوں پر رکاوٹیں اور مواصلاتی نظام کی بندش کے باعث وہاں صحافیوں کے لیے معلومات فراہم کرنے میں شدید دشواریاں ہیں. صحافیوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. سری نگر میں بی بی سی کے نامہ نگار ریاض مسرور نے اس سلسلے میں چند صحافیوں سے بات کی ہے جو کشمیر میں گزشتہ ایک ماہ کی بندشوں کے باوجود یہاں رپورٹنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں.
باہر کے زیر نظام کشمیر میں ظاہر ہے ایک مہینے سے ایک جیسی صورتحال ہے، بندشیں، پابندیاں، تدگنیں، تجارتی اور تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں، لیکن اس میں صحافیوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ اپنا کام بھیج نہیں پاتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون بند ہیں. لیکن دوسرا مسئلہ بھی ہے कि वो जब एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करते हैं तो रास्ते में किस तरह के मुश्किलात आते हैं। शान, आपके साथ एक वाकया पेश आया जो आप कहते हैं, वो क्या है?
मैं निकला था लाल चौक में स्टोरी के लिए, मैं गया था और श्रीनगर में मैं स्टोरी के लिए आया था कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके। तो हम जा रहे थे, मेरा कैमरा मेरे कंधे पे था और हम लोग जा रहे थे, तो नवाटा में हमको CRPF ने रोका, तो मेरा फोन देखा, फिर उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गड़बड़ इंसान है और फिर मेरे को ले गए नवाटा पुलिस स्टेशन, जेके पुलिस के हाथ में सौंप के वो निकल गए। तो जेके पुलिस ने फिर मेरा कैमरा और फिर फोन सब देखा उसमें, और उनके हिसाब से उनको लगा कि कुछ ऑफेंसिव नहीं था उसमें।
इससे आपको क्या लगता है कि यहाँ कितना मुश्किल है काम करना?
It's next to impossible. It's because there's कोई communication तो है ही नहीं। अगर कल मैं सोच रहा था कि अगर मैं डिटेन होता, बुक होता, कुछ किया होता मेरे साथ, तो मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाता। एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हालात सुधर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हम जब जाते हैं तो जो आर्मी है या पुलिस है उनको जाने नहीं देगी या बहुत सारे सवाल पूछेगी और कुछ अलाव नहीं करेगी, कुछ दिखाने के लिए लोगों से भी बात नहीं कर सकते हैं। तो माहौल बहुत ही मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड है।
जुहैब, आप 2016 में खुद मुतासिर हुए, आपकी आंख में पैलेट लगा था, तो आज की सूरत हाल को अगर आप कंपेयर करें 2016 के साथ तो क्या बात है, आप क्या फर्क है या आज ज्यादा मुश्किल है काम करना?
देखिए, 3 साल से इलाज कर रहा हूँ मैं अपनी आंख का। जब मैं फिर से कॉन्फ्लिक्ट कवर करने आया तो सोचा चलो इस बार कुछ रिलैक्सेशन होगी, लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में वापस आकर पता चला एज अ जर्नलिस्ट यहाँ पर किस्तों की जिंदगी अब बितानी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर रुके तो CRPF वाले का मूड बिगड़ जाता है, जी आगे चलो, सर बात तो सुनो, नहीं आगे चलो। अभी रिसेंटली जब मैं नवाकदल में गया था, वहाँ पर एक बुजुर्ग की डेथ हो गई थी स्मोक कैनिस्टर की वजह से, टेयर गैस की वजह से। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे CRPF वाले ने रोका, जो कि उनकी ड्यूटी थी, समझ आता है, एंड ही सेड कि मुझे जो आपके DM साहब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका अथॉरिटी लेटर दिखा। मैंने कहा जी कर्फ्यू पास है, तो वो लेटर अथॉरिटी लेटर पर अड़ गया। तो मुझे तकरीबन आधा एक घंटा वहाँ पर रोका और मुझे वो समझाना पड़ा कि अथॉरिटी लेटर और कर्फ्यू पास इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये सब दिक्कतें मतलब 2016 में भी थी, आज भी है। आज भी कितने सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो फ्री लांस करते हैं और उनके मेमोरी कार्ड्स डिलीट कराए गए इस 2019 में।
श्रीनगर में हमारे साथी रियाज मसरूर और मकामी सहाफियों की गुफ्तगु आपने सुनी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम कश्मीरी अवाम इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और अजीजों से राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों ने BBC के फेसबुक सफ़े पर ऑडियो मैसेजेस और टेलीफोन कॉल्स की हैं, आइए सुनते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद कासम है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से मेरा तल्लुक है। तो मेरे घर वालों के लिए मेरा यही पैगाम है कि मैं ठीक हूँ और आपकी भी खैरियत चाहता हूँ। बाकी हिंदुस्तान से मेरा ये सवाल है कि वो दुनिया के सबसे बड़ा जमहूरियत का दावेदार है, तो उसको चाहिए कि ये कश्मीर में जो भी जुल्म हो रहा है और इसको बंद करे।
मेरा नाम परवेज अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ तहसील मेंढर अड़ी में रहता हूँ। आज एक महीना हो गया हमें, हमारे को घर में कोई रास्ता नहीं हो रहा है और पता नहीं घर वाले किस परेशानी में होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि घर वाले भी ठीक ठाक हो गए। हम भी इंशाल्लाह ये पैगाम देना चाहता हूँ कि घर वालों को कि हम बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं, हमारी कोई फिक्र नहीं करना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप भी ठीक हो गए।
मैं फैज अहमद अहंगर सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मेरा पैगाम मेरे घर वालों के नाम है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ, खैरियत से हूँ और अपने घर वालों की खैरियत चाहता हूँ। और मेरा पैगाम है मेरे दोस्त के लिए आमिर नबी डार, जो कि 28 अगस्त को घर चले गए छुट्टी पे, मगर अभी तक हमें उसका कुछ अता पता नहीं। अगर आमिर तुम ये मैसेज सुन रहे हो, जब भी सुनोगे तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे सभी दोस्त परेशान हैं, खासकर रफीक आपके लिए बार बार पूछ रहा है, प्लीज़ मेहरबानी करके इस मैसेज का जवाब ज़रूर दें।
मैं अब्दुल कयूम सनेज सुनकोट जम्मू और कश्मीर से बोल रहा हूँ और फिलहाल मैं कतर में हूँ। मैं अपने घर वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब भाई जो खैरियत से हैं, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आप हजरात भी खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे।
मैं खालिद हुसैन कपवाड़ा तंगदार से रहने वाला हूं। मैं यहां पर ठीक ठाक हूं और उम्मीद करता हूं कि घर वाले सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से।
कश्मीर से तनवीर अहमद मलिक, मैं इस वक्त मुंबई में हूं। यहां पे मैं बखैर व आफियत से हूं। उम्मीद है कि मेरे घर वाले भी बखैर व आफियत से होंगे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजूर अहमद कवेद से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर अड़ीवा। और हमारे घर वालों को कोई पता नवा नहीं लग रहा है, तो मेरी मैसेज ये है, हम खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कुवैत की कंट्री में, हमारी कोई फिक्र ना करें।
ये थे कश्मीर में मुकीम अपने प्यारों के लिए आपके पैगामात। यहाँ सैरबीन निस्फ को पहुँचा। एक वक्फे के बाद खेलों की खबरें और फिर दीगर मौजूदात प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
खबरों के साथ मैं हूं अब्दुलरशीद शकूर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान मिसबाहुलक को 3 साल के लिए पाकिस्तानी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। मिसबाहुलक को हेड कोच के साथ साथ चीफ सिलेक्टर भी मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान के क्रिकेट में ये पहला मौका है कि हेड कोच और चीफ सिलेक्टर के ओहदे बैक वक्त किसी एक शख्स के सुपुर्द किए गए हैं। साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इससे पहले भी 2 मरतबा बॉलिंग कोच और 2 मरतबा हेड कोच रह चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए मिसबाहुलक, मोहसिन खान, ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स और जनूबी अफ्रीका के योहान बोथा ने इंटरव्यूज दिए थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओल्ड ट्रैफर्ड में 4th टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन डेविड वार्नर की मायूसकुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहा और वो बगैर कोई रन बनाए स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा T20 इंटरनेशनल 4 विकेटों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का तीसरा T20 6 सितम्बर को खेला जाएगा। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें कल से वाहिद टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल हो रही हैं। ये अफगानिस्तान की टीम का तीसरा टेस्ट मैच है। स्पिनर राशिद खान पहली मर्तबा अफगानिस्तान की टीम की कयादत कर रहे हैं।
It's Grigor Dimitrov who has match point to get to the semi-finals. Federer hits his forehand out and Federer is out.
20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाले रॉजर फेडरर को US ओपन के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें आलमी नंबर 78 ग्रेगर डिमिट्रोव ने 5 सेट्स के सख्त मुकाबले में शिकस्त दे दी। डिमिट्रोव सेमीफाइनल में डेनिल मेडवेडेव से मुकाबला करेंगे। खवातीन मुकाबलों में सरीना विलियम्स ने चीन की वैंग क्यांग को सिर्फ 44 मिनट में 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला एलिना स्वेटलिना से होगा, जिन्होंने योहाना क्वांटा के खिलाफ कामयाबी हासिल की।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर और हालाते हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में बारबेक्यू करने पर आपको मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक वाक्या पेश आया है मगरबी ऑस्ट्रेलिया में। इस मुकदमे का अंजाम क्या हुआ, ये जानने के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com, जहां इस बारे में तफसीली खबर मौजूद है। दीगर मौजूदात की जानिब बढ़ते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि पाकिस्तान बाबा गुरु नानक के 55वें जन्मदिन के मौके पर सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी खोल देगा। ताहम भारत अपने नामुकम्मल कामों का खुद जिम्मेदार है। भारतीय वफ्द से मुलाकात के बाद वाघा बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि करतारपुर राहदारी पर बातचीत मस्बत रही है, चंद एक नुकात के अलावा बाकी तमाम पर इत्तफाक हो गया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं।
डोजिया की तफसील मैं नहीं बताऊंगा जी, लेकिन बात तो हुई, मैंने ये नहीं कहा बात नहीं हुई, 5000 वाले पे हमने एग्री कर लिया है कि 5000 तो आएंगे और इससे ज्यादा जो कैपेसिटी मुमकिन हो पाकिस्तान उसके लिए विलिंग है, जितना ऊपर जा सके कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि हमारी साइड से भी यात्रियों ने पिलग्रिम्स ने आना है जो सिख या बाबा नाम लेवक हमारी तरफ से हैं और बैरून मुल्क से आते हैं, तो एक टोटल नंबर एक कैलकुलेट होना है, तो 5000 से जितना ऊपर आ सकें इस पर एग्रीमेंट है जी हमारी तरफ से, हम अभी भी इस पर तय कर रहे हैं, इस पे से ब्रैकेट्स हटा आए हैं कि जी जितने कैपेसिटी प्रोवाइड करेगी 5000 से ऊपर हम उसको वेलकम करें जी। अपने काम के इंडियन जिम्मेदार हैं जो उन्होंने करना है, हम खोल देंगे जी 550वीं पे नवंबर में।
हमारी साथी नाजिश जफर ने इसी हवाले से BBC की नामा निगार शुमाइला जाफरी से बात की और उनसे पूछा कि करतारपुर राहदारी पर होने वाले आज के मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त हुई।
آج جو پاکستان فورن آفس کے اسپوکس مین ہیں ڈاکٹر محمد فیصل, انہوں نے ہی پاکستان کے ڈیلیگیشن کی قیادت کی تھی ان مذاکرات کے لیے جو کہ انڈین سائڈ آف بارڈر پہ یعنی کہ اٹاری پر ہوئے, اور انہوں نے واپس آ کے میڈیا سے ایک جو ہے وہ بات چیت کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کرتارپور راہداری پر صرف ایک دو معاملات ایسے ہیں جن پہ مزید بات چیت ہونا باقی ہے, لیکن کافی حد تک اس پہ معاملات طے پا چکے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بابا گرو نانک دیو جی کی جو 550ویں برتھ اینیورسری آ رہی ہے اس کے موقع پر اپنی سائٹ کا جو حصہ اس راہداری کا اس کو کھول دے گا. اب اس کا ایک اور جو ہے وہ دور ہونا ہے بات چیت کا, اور اس کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ جو انڈیا کا ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آئے گا, اور انہوں نے کہا کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو باقی جو معاملات ابھی باقی ہیں کنسنسس ہونے والے ان کے اوپر بھی بات چیت کر لی. نام دیے
شمائل, آپ اس منصوبے کے افتتاح کے وقت سے اس کو کور کرتی آئی ہیں. ایک بڑا جوش و خروش تھا خصوصاً پاکستان کی سائڈ پر جو سکھ موجود ہیں اور ویسے بھی عوام کے اندر, اور کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے بہت سے تحفظات پیدا ہو گئے تھے. آپ کو لگتا ہے اب بھی ان تحفظات میں کمی آئے گی خاص طور پر آج کی بات چیت کے بعد؟
بالکل اس میں کمی آئے گی, اور پاکستان کی طرف سے بار بار جو ہے یہ میسج دیا گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاملے پہ تعلقات جیسے بھی ہیں, کرتارپور کوریڈور پر پاکستان اپنی سائٹ پہ کام جو ہے وہ جاری رکھے گا. پاکستان کے لیے اس کی بہت سگنیفیکنس ہے, اور ایک اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے بہت سے انالسٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں سکھوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور گڈ ول جیسچرز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ منصوبہ بہت اہم ہے, اور وعدے بھی کیے گئے ہیں. تو پاکستان نے تو بار بار یہ کمٹمنٹ دکھائی ہے, اور انڈین سائڈ پہ بھی لگتا ایسا ہے کہ کافی پریشر ہے پنجاب میں جو سکھ رہتے ہیں ان کی طرف سے, کیونکہ ان کے لیے کرتارپور کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ وہ گرودوارا ہے جہاں پر جو سکھ مذہب کے بانی ہیں بابا گرو نانک دیو جی, انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے ہیں. تو ان کے لیے بہت زیادہ جذباتی وابستگی ہے, اور اس سے پہلے وہ اس گرودوارے کی زیارت یا یاترا تو نہیں کر سکتے تھے, پر بارڈر کے دوسری طرف انہوں نے ایک دوربین لگائی ہوئی تھی اور ایک اونچا سا ایک سٹیپ بنا ہوا ہے جس پہ دوربین کے ذریعے وہ اس کا نظارہ کیا کرتے تھے. تو ان کے لیے ایک بہت ہی سینٹیمنٹل اور ریلیجیس ویلیو ہے اس جیسٹر کی. بہت سے ڈیلیگیشن پوری دنیا سے سکھوں کے آتے رہے پچھلے ایک سال کے دوران, اور بہت سے لوگ اس سائٹ کو جا کے جس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا وزٹ بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ کافی اہم ہے, اور بالکل آج دونوں نے یہی اشارہ دیا دونوں ملکوں نے کہ اس کے پر کام جاری رہے گا.
بہت شکریہ شمائل ہم سے بات کرنے کے لیے.
پاکستان نے گزشتہ ماہ انڈیا کی طرف سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کے بعد دو طرفہ تجارت معطل کر دی تھی, جس کے بعد پاکستان میں ادویات کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا. لیکن منگل کو پاکستان نے انڈیا سے زندگی بچانے والی ادویات کی درآمدات پر عائد پابندی اٹھانے کا اعلان کیا تھا. پاکستان اب انڈیا سے زندگی بچانے والی ادویات درآمد بھی کر سکے گا اور انڈیا کو برآمد بھی کر سکے گا. تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے نمائندہ بی بی سی ترہب اسکر.
منگل کو پاکستان نے انڈیا سے زندگی بچانے والی ادویات کی درآمد پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا تھا. وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد وزارت تجارت نے ایکسپورٹ امپورٹ آرڈیننس 2016 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, جس کے تحت پاکستان اب انڈیا سے زندگی بچانے والی ادویات درآمد بھی کر سکے گا اور انڈیا کو برآمد بھی کر سکے گا. وزارت تجارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انسانی بنیادوں پر انڈیا سے زندگی بچانے والی ادویات کی تجارت کی اجازت دی ہے.
میرا نام ہے امجد علی جاوا. دیکھیں جی, ایک ڈر یہ ہے, اوپن تو انہوں نے کر دیا لیکن ابھی ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا پروسیجرل ڈیلے آئے گی, اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ وہ ایک ہفتے میں کلیئر ہو جائے گی. اب ہمیں دوسری طرف سے ابھی نہیں پتا کہ کہیں وہ ہمیں دوائی دینے را مٹیریل دینے سے انکار نہ کر دیں, نمبر ون, اور نمبر ٹو ان کی طرف سے بھی کوئی پروسیجرل ڈیلیز نہ آئیں. تو ابھی تو زیادہ ٹائم نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے ایک مہینے کے بعد یہ اس کے ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے.
جن ادویات سے پابندی ختم کی گئی ہے وہ دل کے امراض، بلڈ پریشر، ٹی بی اور کینسر جیسی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ ٹی بی کی ادویات میں استعمال ہونے والا کیمیکل ایتھمبرٹول کا انڈیا ہی واحد ذریعہ ہے. یاد رہے کہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطالبات اور ادویات کی کمی اور قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت نے اس بات کا تعین کر کے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا انڈیا سے آنے والے کیمیکلز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دے دی جائے یا پھر انڈیا کو چھوڑ کر دیگر ممالک سے ادویات کا خام مال منگوایا جائے.
آپ لاہور سے بی بی سی کے نامہ نگار ترہب اصغر کی رپورٹ سن رہے تھے. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کو پارلیمنٹ میں بریگزٹ پالیسی پر ہونے والی پہلی ہی رائے شماری میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد انہوں نے قبل از وقت انتخابات کی قرارداد پیش کرنے کا عندیہ دیا ہے. دوسری جانب برطانوی پارلیمان میں قائد حزب اختلاف جرمی کوربن نے حزب اختلاف کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کا مراسلہ پیش کر رہی ہیں فرحت جاوید.
برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے کچھ باغی ارکان کے باعث حزب اختلاف نے حکومت کی جانب سے برطانیہ کی 31 اکتوبر کو بغیر کسی معاہدے کے یورپی یونین سے علیحدگی کو روکنے کے لیے بل منظور کروانے کے پہلے مرحلے میں حکومت کو شکست دی ہے. ارکان پارلیمان نے اس بل کے حق میں 301 اور مخالفت میں 328 ووٹ ڈالے. پارلیمنٹ میں اس معاملے پر زبردست بحث ہوئی، جس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے قانون سازوں کی جانب سے بریگزٹ حکمت عملی کو روکنے کے لیے منصوبے کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے یورپی یونین کے ساتھ علیحدگی کے نئے معاہدے پر بات چیت کرنے کے ارادے کو نقصان پہنچے گا.
چونکہ میں اس منصوبے کے ساتھ چلنے سے انکار کرتا ہوں، لہٰذا ہمیں ایک انتخاب کرنا پڑے گا. مسٹر سپیکر، میں الیکشن نہیں چاہتا، عوام الیکشن نہیں چاہتے. مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن کے علاوہ کوئی بھی الیکشن نہیں چاہتا، لیکن اگر ایوان کل اس بل کے لیے ووٹ دیتا ہے تو عوام کو اس کا انتخاب کرنا پڑے گا جو 17 اکتوبر کو اس مسئلے کو برسلز جا کر حل کرے اور اس ملک کو آگے لے کر جائے.
برطانوی وزیر اعظم کے خطاب پر اپنے رد عمل میں قائد حزب اختلاف جیرمی کوربن کا کہنا تھا کہ معاہدے کے بغیر یورپی یونین کو چھوڑنے کے لیے کوئی رضامند نہیں ہے.
مسٹر سپیکر، پوائنٹ آف آرڈر پر میں آج رات کے ووٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہم پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ایوان صدر نہیں بلکہ وزیر اعظم ہوتا ہے. وزراء اعظم ہاؤس آف کامنس کی رضامندی سے حکومت کرتے ہیں، ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں جن میں خود مختاری قائم ہے. وزیر اعظم عام انتخابات کے لیے ایک تحریک پیش کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ضرور پیش کریں، لیکن اس سے پہلے وہ بل میں تصحیح کریں اور نو ڈیل کی شرط پر نظر ثانی کریں.
واضح رہے کہ حزب اختلاف کے بل کے تحت یورپی یونین سے علیحدگی یا بریگزٹ کا عمل مکمل ہونے کی تاریخ 31 اکتوبر سے بڑھ کر 31 جنوری 2020 ہو جائے گی. یہ بل وزیراعظم کو پابند کرے گا کہ وہ یورپی یونین سے تاریخ بڑھوانے کی درخواست کریں. اس سے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ ارکان پارلیمان 19 اکتوبر سے پہلے بغیر کسی معاہدے کے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیتے یا پھر وہ کوئی نیا معاہدہ منظور کر لیں. اس سے پہلے برطانوی وزیراعظم اپنا موقف واضح کر چکے ہیں کہ یورپی یونین سے کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو، 31 اکتوبر کو برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا.
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں فرحت جاوید. اس کے ساتھ ہی سیروین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نازش ظفر، پروڈیوسر ایاز اسلم، اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق. کاشان اکمل سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار سے.
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر نہ کوئی سودے بازی کی گئی ہے اور نہ ایسا کبھی ہوگا. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے. وفاقی حکومت نے شدید تنقید کے بعد گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جی آئی ڈی سی کے بارے میں صدارتی آرڈیننس واپس لینے کا اعلان کیا ہے. بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ فیصلہ اس ضمن میں جاری تنازع کو شفافیت سے حل کرنے کے